તારીખ 18/7/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 255 અને 437 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 134
શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 255 पेज नंबर 291 जो पत्र चल रहा है उस विषय में एक स्पष्टीकरण गोपाल देव ने किया है, वो थोड़ा ध्यान में लेने योग्य बात है। वो लिखते हैं कि हमारी दशा मंद योग्य को फिलहाल लाभ करें वैसी नहीं है, हम ऐसी जंजाल को फिलहाल चाहते भी नहीं हैं, और ऐसी जंजाल हमने रखी ही भी नहीं। क्या कहते हैं कि जब ज्ञानी की दशा उत्कृष्ट रहती है, अध्यात्म में ही रहती है, आत्मा में ही रहती है, तब उनको दूसरे को समझाने का विकल्प भी बहुत बोझा लगता है। खुद अपने आत्मा में रहने के लिए उतने अंतरात्म वृत्ति से परिणमन कर रहे हैं कि पारमार्थिक विषय में भी दूसरों को समझाना एक बोझा लगता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि हमारी जो वर्तमान दशा है उसमें कोई सामान्य मंद दशा वाला मुमुक्षु आएगा हमारे संपर्क में, हमारे सानिध्य में, हमारे परिचय में, तो उसको कुछ लाभ नहीं होगा, ऐसी हमारी दशा है। और ऐसी दशा में कोई हमारा संग करता है तो हमको जंजाल लगती है। क्या लगता है? जंजाल लगती है, इसलिए ऐसी जंजाल को हम नहीं चाहते। और ऐसी जंजाल आजकल हमने रखी भी नहीं, कोई आते हैं तो हमारे दरकार छूट जाती है, हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते ऐसे मुमुक्षु के प्रति। इसमें से हमें समझना है थोड़ा, और बात तो प्रासंगिक चली है उन दिनों में, लेकिन एक समझने की चीज है कि जितनी मुमुक्षु की योग्यता विशेष होती है उतना ही उनको ज्ञानी का सानिध्य और लाभ मिलने का मौका मिलता है। तो उत्कृष्ट योग्यता वाले के प्रति तो ज्ञानी को भी रस आता है, क्योंकि पत्र के प्रारंभ में लिखा उन्होंने, हम आपका सत्संग निरंतर चाहते हैं। तो सुभागभाई जैसे उत्कृष्ट मुमुक्षु थे तो उनका संग वो निरंतर चाहते थे, लेकिन कोई मंद दशा के योग्यता वाला होता है तो जंजाल लगते हैं, उन्हें चाहते हैं कैसे संग में हम रहें। इसलिए मुमुक्षु को ऐसा समझना चाहिए कि हमारी योग्यता हीन रहेगी तो ये जंजाल में पड़ने की ज्ञानी की वृत्ति है वो चलेगी नहीं, जंजाल में नहीं पड़ेंगे वो, उनको कुछ लाभ होगा मंद दशा वाले को, तो इसके ऊपर वाले मुमुक्षु से लाभ हो सकता है, क्योंकि वो उनका समाधान कर सकेगा, आपको उतना उपयोग दे सकेगा, उसका उपयोग उतना चलेगा, यानी क्या इतना उपयोग नहीं चलेगा। और इसलिए मंद दशावान मुमुक्षु को ज्ञानी की पहचान भी नहीं होती। पहचान नहीं होने का भी यही कारण एक बनता है कि ज्ञानी इन इस ऐसे केस में रस नहीं लेते, इंटरेस्ट उनको आता नहीं। और उन सबके कारोबार कैसे चलते हैं इसका उनको स्मरण भी नहीं है। कौन कैसे चलते हैं, उनको क्या नुकसान होता है, क्या लाभ होता है, वो क्या करते हैं, हमको तो उसका स्मरण भी नहीं आता। उतनी उपेक्षा हो जाया करती है कि हमको स्मरण भी नहीं आता। फिर भी हमको इन सबों की अनुकंपा तो आया करती है, अनुकंपा का त्याग नहीं हुआ है। इसमें से कोई भी जीव आगे आता है तो खुद रस ले लेते हैं, लेकिन कोई जीव आगे नहीं बढ़ता है, वहां का वहां रहता है, फिर वो जंजाल लग जाती है। फिर इसमें क्या क्या ध्यान दें, इसमें चाहिए उपेक्षा हो जाती है। उनसे अथवा प्राणी मात्र से मन से भिन्न भाव में रखते हैं। भिन्न भाव में रखते मैंने वो पराये हैं ऐसे नहीं रखते हैं। अनुकंपा के कारण तो सबों का हित हो, ये हमारा अभिप्राय हमेशा हमेशा रहा है। और भिन्न भाव रखने से रहे ऐसी भी हमारी परिस्थिति नहीं है, हम भिन्न भाव रख ही नहीं सकते, मतलब ऐसी हमारी योग्यता नहीं है कि हम भिन्न भाव रख लें किसी से। कभी कभी क्या है, कोई मुमुक्षु ऐसे को ऐसा फील होता है, ऐसा लग जाता है कि हमारे पे ज्ञानी का प्रेम कम है, हमारे पे ज्ञानी की करुणा कम है, हमको दूर रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई दूर रखने का नजदीक होने का सवाल नहीं है, किसी से भिन्न भाव नहीं होता। प्रेम तो सबों से होता है, लेकिन फायदा उत्कृष्ट मुमुक्षु को होता है, मंद दशा वाले को फायदा नहीं होता है, क्योंकि सहजी उपेक्षा हो जाती है। बात थोड़ी अटपटी लगेगी, क्योंकि उपेक्षा भी होती है और करुणा भी रहती है, अनुकंपा भी रहती है। भिन्न भाव रहता नहीं फिर भी उपेक्षा भी रहती है, दोनों दोनों भाव एक परिणाम में साथ है, ऐसे परिणाम चलते हैं, दोनों भाव चलते हैं, तो चल सकते भी है। भक्ति के किताब क्वचित क्वचित पढ़ते हैं, परंतु जो समस्त करते हैं, जो भी सब करते हैं, उसमें कोई हमारा ठिकाना नहीं है। बिना ठिकाने वाली दशा से हम करते हैं, कोई ठिकाना नहीं है दशा का। इतनी आत्मा में दशा रहती है कि बाहर की प्रवृत्ति का कोई ठिकाना हमारा नहीं रहता है। जैसे कोई किताब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो पूरा श्लोक पढ़ो, पूरा प्रकरण पढ़ो, या इतना पूरा पेज पढ़ो, या पूरा पैराग्राफ पढ़ो, कोई हमारा ठिकाना नहीं है। कभी चालू करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, हमारी जो स्थिति है एकदम अध्यात्म की मस्ती वाली है, बाहर की इतनी सावधानी उपयोगी नहीं चले, ऐसी परिस्थिति हो जाया करती है। हम फिलहाल बहुत करके आपके पत्रों को समय पर, आपके पत्रों का समय पे उत्तर भी लिख सकते नहीं है। सुभाष भाई को लिखते हैं कि फिलहाल तो हमारी यही परिस्थिति है कि आपके पत्र के उत्तर भी हम समय पर नहीं लिखते हैं, और पूरे स्पष्टीकरण से भी नहीं लिखते हैं, स्पष्टीकरण भी पूरा नहीं दे पाते हैं। यद्यपि यह योग्य तो नहीं, हमको मालूम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पत्रों पर बराबर समय पर मिलना चाहिए, पूरा स्पष्टीकरण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। परंतु हरि की ऐसी इच्छा है, सहज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या कि कुदरत को वही मंजूर है। अब यहां प्रश्न उठ सकता है कि सुभाष भाई तो उत्कृष्ट योग्यता वाले थे, उनके प्रति भी ऐसा हो रहा है जब, तो फिर सुभाष भाई को लाभ से वंचित होना तो नहीं पड़ता है, पर ऐसा होना योग्य है क्या? तो कि एक न्याय से योग्य नहीं है, फिर भी जब कुदरत को यही मंजूर है तो वो भी लाभ का कारण बनेगा, वो भी लाभ का कारण बनेगा। कैसे? कि उनकी जो उत्तर की आकांक्षा है वो आकांक्षा तीव्र हो जाएगी, और फिर उत्तर मिलेगा तो उसके जो ग्रेस्पिंग पावर है वो बढ़ गया है, तो सहज होता है। तो कहते हैं कि वो हरी इच्छा ऐसी ही होगी, ये भी आपको लाभ का ही कारण बनेगा। ऐसा भी बनता है कि ज्ञानी अन्याय करे और लाभ का कारण बन जाए, तो न्याय नहीं है, अन्याय है। सुभाष भाई को पत्र का उत्तर समय पे नहीं मिले और पूरा स्पष्टीकरण भी नहीं मिले, वो न्याय बात, न्याय वाली बात तो नहीं है, फिर भी उससे भी लाभ हो सकता है। अन्याय से भी लाभ हो गए तो न्याय से कितना लाभ हो जाए देख लो। ये तो हीरा की रज है, गुरुदेव कहते थे कि हीरा तो कैरेट में तोले जाते हैं, उसका वेट कैरेट में होते हैं, सेंट में होता है, तोले में नहीं होता, ग्राम में नहीं होता, लेकिन इनकी रज है वो भी कैरेट में बिकती है, वो भी तोले में ग्राम में नहीं बिकती है, रज में ना जब वो कटिंग होता है, घिसते हैं तो रज निकलती है, उनका भी बहुत वैल्यू है, वो भी क्योंकि अवेलेबल नहीं है उतने पैमाने में, और उसका भी उपयोग होता है, उससे अलग अलग इंडस्ट्री में उसका भी उपयोग होता है, तो वो भी कैरेट में बिकती है। ऐसे ज्ञानी का न्याय तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसका अन्याय भी बहुत मूल्यवान है। देखो कैसा कैसा परमार्थ निकलता है इन वचनों में से, क्या क्या बातें निकलती है, बहुत गंभीर विषय है। परंतु हरि की ऐसी ही इच्छा है, वाह क्या लिखता है, बहुत गंभीर बात लिखते हैं कभी कभी, वो मामूली लिखे, ऊपर ऊपर से पढ़ो तो बहुत मामूली लिखेगा, लेकिन इसमें भी मर्म रहा है, और वो प्रयोग उन्होंने किया है सुभाष भाई को। जब उन्होंने ये देखा कि सुभाष भाई हमारे प्रति उतने भक्तिमान हैं और इतने भक्ति में लीन रहते हैं कि वो भी आजकल अपने आत्महित के विषय में अग्रसर नहीं होते हैं, सोचते नहीं है, सावधानी नहीं रखते हैं, आगे बढ़ने का कोई उनको विकल्प नहीं है, बस हमको हमारे भगवान मिल गया, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको संकेत भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको तो प्रकट परमात्मा मिल गया, इससे बढ़कर कोई दुनिया में है ही नहीं हमारे लिए। कृपाल देव ने तो प्रॉमिस ये रखा था कि इस भाव में ही हम आपको ज्ञान प्राप्ति कराएंगे। अब देखा कि इनका आयु पूरा होने जा रहा है, ये बीमारी ऐसी है कि अभी वो बिस्तर पे से कोई उठेंगे वो बात दिखते नहीं है, मृत्यु शैया दिखती है और ज्ञान प्राप्ति हुई नहीं है, अब क्या करना है? तो हमको छोड़ नहीं रहे हैं, जब हमको पकड़ करके बैठ गए तो उसका भी लाभ उठाया। बोले कि आपका दर्शन चाहिए, मेरी कमजोरी है, मैं चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सफर कर नहीं सकता, आ नहीं सकता दर्शन के लिए, आप पधारो। ठीक है चलो, ये मौका अच्छा है। बहुत तड़पाया, क्या किया, बहुत तड़पाया, 7-8 महीना तक तड़पाया, पर उस तरह से तड़पाया। अब आ रहे, आ ही रहे हैं, अभी आएंगे, अभी आएंगे, 15 दिन में आएंगे, 5 दिन में आएंगे, 15-10 दिन में आएंगे, ऐसे ही 7-8 महीने तक बहुत तड़पाया, बहुत तड़पाया। तब वो लिखे कि अब तो मेरी मृत्यु जो है वो रोग के कारण से नहीं होगी, आपके वियोग के कारण से हो जाएगी, आना हो तो आना, मत आना हो तो मत आना। तब देखा कहा अब मौका है, अब मेरी बात निग्लेक्ट नहीं करेंगे, अब मेरी बात पूरी पूरी उठा लेंगे, जो भी मैं कहूंगा वो गंभीरता से धारण कर लेंगे। ये योग्यता देखी, आगे 4-5 दिन साथ में रहे, फिर उठाए, इधर उधर ले गए, वहां भी ज्ञान दिया, मैंने भाव भाषण करवाया, और भाव भाषण करवा करके फिर अलग हो गए, वो बंबई चले गए। इनके मृत्यु के समय साथ में नहीं रहे, बहुत विचक्षणता है, खुद को पता था, सोहा भाई को भी पता था, उनको भी पता था, दोनों को पता था, फिर भी रिक्वेस्ट तो किया होगा, विनती तो किया होगा कि आप क्यों मेरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन वो बोले क्या नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और वो आज्ञा की तो बहुत थे, जैसे आपकी आज्ञा है, आप दुखी रखो तो दुख भी हमें मंजूर है, सुखी रखो तो सुख भी हमें मंजूर है, दोनों बात हमको मंजूर है, आपका दिया हुआ दुख भी हमारे लिए तो सुख ही है। और ऐसा ही हुआ, परमानंद की प्राप्ति हो गई, वहां से अलग हो गए और अम्बालाल भाई को भेज दिए सेवा में, और वो अपने भाववासन के बाद जो स्वरूप की महिमा थे उसमें चढ़ गए, हफ्ते भर में तो अनुभव ले लिया, अपने निज परमात्मा का दर्शन कर लिया, अनंत भाव की भावकटी हो गई एक क्षण में, और पूरा जीवन बदल गया। तो कितनी विचक्षणता रखते थे वो, कृपालु देव की विचक्षणता देखो ना, तो आफरीन हो जाएंगे, तो क्या विचक्षणता है। क्या ज्ञानी किसी को दुख देते हैं क्या है? तो समझदार है, तो पूरे समझदार थे, तो सुभाष भाई में बहुत निर्मलता बहुत आई थी, बहुत निर्मलता आई थी, तो उन्होंने सोचा कि वो जो कर रहे हैं कोई भी एक भी बात ऐसी नहीं है कि हम इसकी आज्ञा के विरुद्ध चले, चाहे हमको सुहाए नहीं सुहाए, अच्छी लगे नहीं लगे, ये हमारी अयोग्यता का विषय है या योग्यता का विषय कुछ भी हो, लेकिन वो जो कर रहे हैं ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वचन है, इसमें कोई हमें हेरफेर करना नहीं है। लिखते हैं कि हरी हरी की ऐसी इच्छा है, ऐसा समझ लेना। अगर हमारा पत्र नहीं आता है, पूरा स्पष्टीकरण नहीं आता है, तो वो भी आप हरी इच्छा समझ करके समाधान कर लेना। हरि की ऐसी इच्छा है इसलिए ऐसे करते हैं, हमारे ख्याल बार ध्यान बार है वो तो बात नहीं है, सब बात ख्याल में है। इसका इतना सूक्ष्म उपयोग होता है, वो क्या अच्छी मोटी बात तो नहीं समझते क्या? वो समझ सको, जानबूझ कर कोई ऐसा होता है तो हमको मालूम पड़ता है वो ठीक हो रहा है, हो रहा है सहज हो रहा है, लेकिन वो ठीक हो रहा है वो भी हमारे ज्ञान में आता है। हरि की ऐसी ही इच्छा है इसलिए ऐसा करते हैं। अब जब समागम होगा, अब जब समागम रूबरू में मिलना होगा, तब हमारा यह दोष आपको भी क्षमा करना पड़ेगा, ऐसी हमको प्रतीति है, विश्वास है। जब हम इस रास को खोलेंगे कि इसमें भी क्या रहस्य है, तब हमको आपको लगेगा कि यह हमारा दोष नहीं है। जब ये दोष को हम खोलेंगे बताएंगे, तब आप हम आपको क्षमा कर देंगे, आपको दुख नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये आपके बर्तन जो है ये क्षमा के योग्य है, ये ऐसा हमको विश्वास है। ऐसी गुड भाषा से सब लिखते हैं, बात तो प्रासंगिक है लेकिन इसमें कितना मर्म पड़ा है। भाषा की गुड़ता अवश्य है, तो उसमें से जो निकलता है वो तो परमार्थ, बहुत बढ़िया परमार्थ निकलता है इसमें से। और यह तब मानेंगे कि जब आपका संग अब दोबारा होगा तब मानेंगे, आपका संग रूबरू होगा तब मानेंगे कि ये बात बराबर है। यह संग चाहते हैं, ऐसे आपका संग भी हम चाहते हैं, परंतु ऐसा योग होना चाहिए, वैसा योग होना दुर्लभ है। ऐसा हम संग में रहे ऐसा योग होना चाहिए, ये योग दुर्लभ दिखता है, अब इतना आसान दिखता नहीं है। बाद में जो आप इच्छा रखी है, आपने इच्छा रखी है, उसके सामने हमारी कोई प्रतिकूलता नहीं है, अनुकूलता है, परंतु यह समागम में जो योग चाहते हैं, यह यदि कुछ हमारी प्रतिकूलता नहीं चाहते हैं ऐसा होने देने में, हरि की इच्छा हो और समागम हो तभी हमारा खेद मिटे, ऐसा मानते हैं। और गुड भाषा में सब लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वो अषाढ़ में वो पत्र चल रहा है कि भादवे में आप निवृत्ति क्षेत्र में कहीं पधारें, हम भी आएंगे, सत्संग में साथ रहेंगे। तो आपने वो लिखा, इच्छा रखी है, इसमें हमारी कोई प्रतिकूलता तो नहीं है, शायद आएंगे, अनुकूलता तो है, परंतु उस समागम में जिस योग को हम चाहते हैं ऐसा योग होने देने की हरि इच्छा हो, हम तो ऐसा योग चाहते हैं कि आपका शाश्वत हित हो जाए, आप हमारे समागम में रहें और आपका शाश्वत कल्याण हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। पर ऐसा कोई हरी इच्छा से मैंने कुदरत से बन जाए, आप में योग्यता आ जाए, हमारी तो परिस्थिति जो है सो है, आपकी योग्यता बढ़ जाए और प्रत्यक्ष परिणमन देख करके परिणमन आ जाए, ऐसी कोई हरी इच्छा हो जाए कि कुदरत को मंजूर हो और समागम हो, तभी ही हमारा खेद मिटेगा। वरना हमको खेद है कि आपका कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, हमारा खेद इसके बिना मिटेगा नहीं। जहां तक आपका हित नहीं होगा, मैंने आप परमार्थ मार्ग में प्रवेश नहीं करोगे, आपको स्वसंवेदन आत्मज्ञान प्रकट नहीं होगा, वहां तक हमारा खेद नहीं मिटेगा। कितना लगाव है, भले ही समागम तो होगा, लेकिन ऐसा योग होना चाहिए कि हमारे समागम में आते ही आपका काम हो जाए, ये हम चाहते हैं। अगर नहीं होगा तो हमको खेद रहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, अब भी ऐसा क्यों हो रहा है, एक साल पूरी नहीं हुई है फिर भी इतना चाहते हैं। और कोई ऐसी परिस्थिति रही है कि 6-7 साल तक ये ऐसा योग नहीं बना, आखिर में जो बना सो बना, जो कुछ रम्मत हुई ये आखिर का खेल पिछले 1 महीने में हो गया, 25 दिनों में हो गया, 1 महीना करीब समझो ना, 1 महीना करीब हो गया। जेठ और दशम का 30 के साल में उनका आयु पूरा हुआ, जेठ सूदी में आए होंगे, चैत्र 770 वमानिया, चैत्र शुद्ध दशम, इधर वैशाख द्वार वैशाख में आ गए, वैशाख सुद पुनम को साइला से पत्र लिखा है, वैशाख सुद पुनम को आया, वैशाख जेठ जेठ सुद पुनम 1.25 महीना करीब पहले आ गए। बस ये पूरा खेल 1.25 महीने में सुभाग भाई का अनंत भवों का निस्तार हो गया, अनंत काल की कमाई 1 महीने में होगी, 1.25 महीने में होगी, जो भी हुआ सो उतने में हुआ, उसकी तैयारी हुई 6-7 साल लगा। वो चाहते थे कि अभी अभी हो जाए तो अच्छा है, वो खुद चाहते थे, और नहीं हो रहा था तो उसका खेद भी होता था। हमारी दशा का संक्षिप्त वर्णन पढ़ करके आपको उत्तर नहीं लिखा गया हो इसके लिए क्षमा देने की विज्ञापना विनंती करता हूं। क्या लिखते हैं कि हमारी दशा का संक्षिप्त वर्णन पढ़ करके आगे आपको कई पत्रों का उत्तर नहीं दिया हो, लेकिन उसमें काफी दे दिया, एक पत्र में इसी 255 में काफी हमारी बात खोल करके बता दी है, उतनी आत्मीयता थी कि अपने परिणमन को खोल करके लिख दिया। तो आपको जो पढ़ने में आया इससे सभी पत्रों का जो भी हमको आपको मिलना चाहिए वो एक पत्र में दे दिया, इसलिए आप हमको क्षमा करेंगे ऐसा हम विनती करते हैं। प्रभु की परम कृपा है, प्रभु की परम कृपा है, मैंने हमारे आत्मा में हमारे कारण परमात्मा की पूरी कृपा हुई है, हमारी आत्मा हमारे पे प्रसन्न है, हमको किसी से भेदभाव नहीं रहा, किसी से भेदभाव हम रखे नहीं है, किसी में दोष बुद्धि आती नहीं, कोई भी व्यक्ति में ये आत्मा दूषित है ऐसा नहीं आता है, किसी के द्वेष बुद्धि दोष बुद्धि नहीं होती है किसी भी आत्मा पर। देख दोष आता है उनका पूरा लाइन बदल जाता है, इसलिए कभी हम ऐसा अभिप्राय व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं रखते कि वो तो ऐसा ही है, ऐसा कभी नहीं रखते। मुनि के विषय में हमको कोई निम्न कोटि का विचार नहीं है, हल्का विचार नहीं है, उनको योग्यता जानते हैं तो समझने के योग्य नहीं है, फिलहाल उसकी योग्यता में उस बात को समझ सके ऐसा नहीं है, लेकिन इसके विषय में कोई हमको कोई दोष बुद्धि से कोई विचार नहीं आता है, शायद कोई विरोध विरोध भी करते होंगे कुछ भी हो, हमको कहीं के बारे में हल्के विचार नहीं आता। परंतु हरि की प्राप्ति न होए ऐसी प्रवृत्ति में वही वो वे पड़े हैं, वो ऐसी प्रवृत्ति कर रहे हैं कि उसको भगवान आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सके, ऐसी प्रवृत्ति में वो पड़े हैं, इसलिए हमको मालूम पड़ता है कि वो सुलझेंगे नहीं, ऐसी प्रवृत्ति लेकर के बैठ गए, चाहे कभी कोई गलत अभिप्राय लेकर के बैठ जाता है तो उसका सुलझना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। अकेला बीज ज्ञान ही उसका कल्याण करे, ऐसी उनकी और दूसरे बहुत मुमुक्षुओं की दशा नहीं है। वहां बीज ज्ञान में क्या उपदेश बोध, अकेला उपदेश बोध ही उसका कल्याण करे, ऐसी उनकी भी दशा नहीं और दूसरे बहुत से मुमुक्षों की ऐसी दशा नहीं है कि उनको उपदेश बोध मिल जाए और कल्याण हो जाए। सिद्धांत ज्ञान साथ में चाहिए, देखो सिद्धांत ज्ञान पर कितना वजन है, सिद्धांत ज्ञान साथ में चाहिए क्योंकि मुनि है, वैराग्य संपन्न है और कोई संसार की पाप प्रवृत्ति है ही नहीं, इसलिए वो खुद ही संयम में रहते हैं, दूसरे को भी उपदेश भी देते हैं, लेकिन उसमें उसका कोई कल्याण हो ऐसा हमें नहीं दिखता। सिद्धांत ज्ञान साथ में चाहिए, यह सिद्धांत ज्ञान हमारे हृदय में आवृत रूप से पड़ा है, हम अभी खोलते नहीं इस बात को, गूढ़ भाषा में बहुत बात करते हैं लेकिन उस पर एक प्रतिबंध आवरण रहा है, इसलिए हम खोल नहीं रहे हैं। कहाँ खोले, किसके पास खोले, है हमारे हृदय में बहुत भरा है, सिद्धांत ज्ञान का समुद्र पड़ा है लेकिन किसके पास खोले, तो उनका कल्याण करने में तो सिद्धांत ज्ञान चाहिए लेकिन इसकी योग्यता नहीं है। वैसे हरि इच्छा यदि प्रकट होने देने की होगी तो होगा, अगर कुदरत को मंजूर होगा तो वो भी बाहर आएगा अपने काल में, हम कोई खींचाता नहीं करके कोई काम करना चाहते नहीं है, अगर कुदरत को मंजूर होगा तो वो हमारे हृदय में से वैसे ही स्वयं बाहर आ जाएगा, और किसी का भला होगा तो हो जाएगा। हमारा देश हरि है, हमारी जात भी हरि है, काल भी हरि है, देह भी हरि है, रूप भी हरि है, नाम भी हरि है, दिशा भी हरि है, सर्व हरि है, फिर भी और फिर भी इसके बावजूद भी हम ये व्यापार के कारोबार में हैं, फिर भी हम इस कारोबार में हैं, ये इसकी हरि की इच्छा का कारण है। मैंने हमारी परिस्थिति सब आत्मामय है, हमारा देश, हम कहा जिस देश में हम निवास करते हैं, देश मतलब क्या, जहां रहना होता है, हरि मैंने आत्मा। हमारा देश कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, हमारे आत्मा में रहते हैं। हमारा देश भी हरि है, हमारी जात भी हरि है, आत्मा की जात है हमारी, काल भी हरि है, हमारा परिणमन भी आत्मामय है, अरे हमारा देह भी हरि है, हमारा रोम रोम में से आत्मा की पुकार उठती है, कहीं आत्मा मय दशा के सिवा दूसरा अवकाश शरीर में भी नहीं है। रूप हरि है, हमारा दिखाव रूप, रूप क्या होता है, दिखाव होता है, वो भी है, आत्मा आत्मा रूप है हमारा, और हमारा नाम भी हरि है, हम जहां भी चलते हैं हमारी परिणमन की दिशा भी आत्मामय है, दिशा भी हरि है, और सब कुछ हरि ही हरि, आत्मामय ही है, इसके बावजूद भी ये कारोबार में बैठे हैं। देखो कितनी अटपटी स्थिति है, इतना आत्मामयता होने के कारण भी 24 साल की उम्र है, आज तो हमारे लड़के इससे बड़े हो गए होंगे, तो उतनी छोटी उम्र में लिखते हैं कि ये हमारी परिस्थिति, आत्मामय स्थिति है, कारोबार में बैठे हैं, और भी इसकी इच्छा का कारण है, वो भी उनके कारण से है, समझो हमारे कारण से कुछ नहीं है, हम चाहते हैं इसलिए वो सब होता है, वो भी सहज है, इसका मतलब वो भी सहज है, जो भी होता है वो सहज ही होता है, और वो ही ठीक है, हमको दूसरा विकल्प आता नहीं है, और हम पर हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या एक कारोबार चलता है या चलाते हैं इसलिए हमको कोई फर्क पड़ता है, सो बात नहीं है, इसलिए वो भी हरी इच्छा है समझ लो। ओम शांति शांति शांति, यहाँ पर उन्होंने पत्र पूरा किया है, और भी 15 मिनट है, कौन सा पत्र लेना है,
437
अच्छा वो छह पद वाला, हाँ कर वो बाकी है ना, वो बाकी मैं इसलिए नहीं लिया कि अब जो विषय चलता है वो अन्य मत का चलता है, ऐसी ऐसी मान्यता है, कोई आत्मा को ऐसा मानता है, कोई आत्मा को ऐसा मानता है, कोई आत्मा को ऐसा मानता है, तो भ्रांति के असत दर्शन जो है, असत दर्शन है, उसके ऐसे ऐसे प्रकार हैं, और जीव ने ऐसा ही आग्रह किया है, आगे भूतकाल में इस तरह से अपनी मान्यता का आग्रह किया है, असत मान्यता का, और त्या वहां तक उसको उसकी आत्मा की मुक्ति होने का कोई प्रसंग नहीं आएगा। फिर इसके बाद में जो लिखा है वो ठीक है, तो थोड़ा ये पोर्शन छोड़ करके तो लिखते हैं, और यही असत्संग वो क्यों हुआ है, ऐसा असत मान्यता के असत्संग के कारण से मुख्यतया हुआ है, यह असत्संग आदि टालने के लिए सत्संग ज्ञानी की आज्ञा का अत्यंत अंगीकृत होना और परमार्थ स्वरूप ऐसा जो आत्मापना यही जानने योग्य है। ये सत्संग टालने के लिए सत्संग चाहिए, ज्ञानी की आज्ञा का पालन चाहिए अत्यंत चुस्त रूप से, और अपने आत्मा का आत्मापना क्या है वो भी जानना चाहिए। अब कहते हैं पूर्व में हुए ऐसे जो तीर्थंकर आदि ज्ञानी पुरुष, उन्होंने ऊपर कहीं ऐसी जो भ्रांति उसका अत्यंत विचार करके भिन्न भिन्न मान्यताओं के विषय में बहुत गहरा विचार से अत्यंत एकाग्र रूप से तन्मय बने से जीव स्वरूप को विचार करके या अनुभव करके जीव स्वरूप से शुद्ध स्थिति की है। ज्ञानी पुरुषों ने क्या किया कि इस पर विचार किया और अपने जीव स्वरूप का विचार करके उसमें स्थिर होकर के उन्होंने फिर उपदेश दिया कि यह आत्मा और दूसरे सभी पदार्थ यह श्री तीर्थंकर आदि की आदि सर्व प्रकार की भ्रांति रहित पड़े जानने के लिए अत्यंत दुष्कर ऐसा पुरुषार्थ का आराधन किया है, आत्मा में स्थिति किया है और आत्मा को और सर्व पदार्थ को जानने के लिए और भ्रांति रहित रूप से जानने के लिए अत्यंत दुष्कर ऐसा पुरुषार्थ किया है। ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है, पुरुषार्थ के कारण से ज्ञान हुआ है। आत्मा को एक भी परमाणु का आहार परिणाम से अनन्य भिन्न करके इस देह को देह में स्पष्ट ऐसा अनाहारे आत्मा स्वरूप से जीने वाला ऐसा देखा है तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने कि कैसा आत्मा देखा है कि एक भी परमाणु का आहार परिणाम से लेकर के बिल्कुल भिन्न अपने देह में अपने शरीर होते हुए भी स्पष्ट ऐसा अनाहारी आत्मा, आत्मा आहार नहीं करता ऐसा देखा है। एक परमाणु का आहार से लेकर के देख लिया कि आत्मा अनाहारी पदार्थ है, स्वरूप से जीने वाला आत्मा है, आहार से जीने वाला नहीं है। क्या निकलता है इसमें से? आधार बुद्धि। हम ये समझते हैं कि आहार पानी हवा से हम जीते हैं, यही हमारा जीवन का आधार है, ये बिल्कुल गलत बात है। तीर्थंकर आदि ने आत्मा को देखा है, वो ऐसा अनाहारी आत्मा देखा है कि वो स्वरूप से जिंदा रहता है, अपने स्वरूप से जिंदा रहा है और अनंत काल अपने स्वरूप से ही जीने वाला है, आहार पानी से जीने वाला नहीं है, ऐसा अपने देह में देख लिया भगवान ने। स्वरूप से जीने वाला ऐसा देखा है, यह देखने वाले ऐसे जो तीर्थंकर आदि ज्ञानी हैं, वे स्वयं ही शुद्धात्मा है, वे देखने वाले स्वयं शुद्धात्मा है, इसलिए वहां भिन्न रूप से देखने का कहना यद्यपि घटित नहीं होता, फिर भी वाणी धर्म से ऐसा कहा है। क्या स्पष्टीकरण दिया कि भगवान ने ऐसा आत्मा देखा, तो आत्मा और देखने वाले भगवान कोई अलग अलग है क्या कि नहीं? तो स्वयं ही शुद्ध आत्मा है और स्वयं ने स्वयं के स्वरूप को देखा है, लेकिन हमारी भाषा में भिन्नता आई कि देखने वाला भगवान देखा अपने आत्मा को, वो तो वाणी धर्म से भाषा के धर्म से ऐसा बोला है, ऐसी भाषा किए बिना कोई समझे नहीं इसलिए ऐसा बोला है। वास्तव में
दो आत्मा वहां है नहीं, ऐसा जो ऐसे जो अनंत प्रकार से विचार करके भी जानने योग्य चैतन्य घन जीव, क्या कहा, ऐसे अनंत प्रकार से विचार करके भी जानने योग्य चैतन्य घन, अवतरण चिन्ह में लिखा है चैतन्य घन आत्मा, यह दो प्रकार से तीर्थंकर ने कहा है। ऐसे आत्मा को, चैतन्य घन को दो प्रकार से कहा है कि जो सत्पुरुष से जान करके विचार करके सत्कार करके जीव स्वयं उस स्वरूप में स्थिति कर ले। कब स्थिति करें, देखो भी क्रम से बुलाए कि ऐसा आत्मा दो प्रकार से कहा है, जो सत्पुरुष द्वारा जानना, विचार करना और सत्कार करना, बहुमान से अंगीकार करना, वो जो कहते हैं उसको, और अपने स्वरूप में स्थिति करें। पदार्थ मात्र तीर्थंकर आदि ज्ञानियों ने वक्तव्य और अवक्तव्य ऐसे दो व्यवहार धर्म वाले माने हैं। ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने सभी पदार्थ को वक्तव्य भी माना है और अवक्तव्य भी माना है, क्योंकि कुछ अंश में वो वक्तव्य है और बाकी के अंश में वो वक्तव्य नहीं है, है वक्तव्य है। हाँ, परिणमन है वो वक्तव्य नहीं है, तो देखने से उसका ज्ञान होता है, सुनने से ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल साइड है परिणमन की, वो थियोरेटिकल साइड नहीं है, और थियोरेटिकल साइड में वो आता नहीं, व्याख्या में वो आता नहीं, उसका डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, वो देखना पड़ता है। परिणमन देखने का खुलासा, हाँ, परिणमन देखता कैसे देखता है, दिखते हैं कि जो इमोशनल परिणमन दिखता है कि नहीं दिखता है, कोई आदमी बोले नहीं ऐसे गंभीर पड़े बैठे रहे तो शायद नहीं दिखे, लेकिन हंसने लगे मालूम पड़ जाएगा वो प्रसन्नचित है, रोने लगे मालूम पड़ जाएगा खिन हो रहा है, तो परिणमन देख के परिणमन आता है कि नहीं आता है, किसकी प्रसन्नता देख करके हमें भी प्रसन्नता आती है, और किसी की दुख देख करके हमें भी दुख अनुकंपा हो ही जाती है। अनजाने लोगों को भी लोग दान क्यों देते हैं जो अनुकंपा के योग्य होते हैं, जैसे जाड़े के दिन है किसी के पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दे देते हैं, क्यों, उनके दुख को परिणमन देख करके देखने वाले को दुख होता है, पर वो अपना दुख मिटाने के लिए उनको दे देता है, उसी का नाम है अनुकंपा। वास्तव में अपना दुख को मिटाना चाहता है, पर वो भी चाहता है कि हमें भी ऐसा दुख कभी नहीं होना, उसी का नाम अनुकंपा बोला जाता है, वो परिणमन देख के ही परिणमन आता है। ऐसे ज्ञानियों का भी जो परिणमन है, तो परिणमन देखने से देखने वाले को भी ज्ञान दशा उत्पन्न होती है, तो अवक्तव्य है, वो वक्तव्य नहीं है, उसकी कोई भाषा नहीं हो सकती है। इसलिए ज्ञानी के संग में रहने का लाभ यही इसी प्रकार का है कि परिणमन देखने को मिल सकता है, अगर हमारी नजर होती है तो, नजर नहीं होती तो वो भी नहीं मिलता। अव्यक्तपने से जो है वो यहां अव्यक्तव्य ही, अवक्तव्य ही है, वक्तव्यपने जो जीव धर्म है, यह सब प्रकार से तीर्थंकर आदि कहने को समर्थ है, क्योंकि तो उनको पूरा ज्ञान है और भाषा का योग भी दिव्य धनिका उनको होते हैं।
और यह मात्र जीव का विशुद्ध परिणाम है, अथवा सत्पुरुष के द्वारा जानने में आए ऐसा जीव धर्म है। वक्तव्य जो है वो भी अगर जीव का परिणाम विशुद्ध हुआ, योग्यता हुई तो समझ सकता है, या कोई सत्पुरुष मिले तो वो उसको समझाए। और यही धर्म वह लक्षण से अमुक मुख्य प्रकार से करके जो दुहा के विषय कहा है, कुछ दुहा जो है वो समता रमता उरदता बनारसीदास का जो दुहा है ना, उसी की बात करते हैं। वही धर्म जो लक्षण द्वारा अमुक मुख्य प्रकार से इस दुहा के विषय में कहा है, अत्यंत परमार्थना अभ्यास है उसकी व्याख्या अत्यंत स्पष्ट समझने में आती है। अगर जीव को परमार्थ का अभ्यास मैंने आत्म कल्याण का पुरुषार्थ होता है तो उसको परमार्थ का अभ्यास कहते हैं, तो ये बात समता रमता उरदता वाली समझ में आएगी। वरना वक्तव्य धर्म भी समझ में नहीं आएगा तो अवक्तव्य धर्म तो समझ में आएगा भी कहां से। अत्यंत परमार्थ के अभ्यास से यह व्याख्या अत्यंत स्पष्ट समझ में आती है, और जब यह समझ में आता है तो आत्मापना भी अत्यंत प्रकट हो जाता है। ये दुआ इतना बढ़िया है, समता रमता उरदता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। बनारसी दास ने अपने अनुभव से चैतन्य घन आत्मा के वक्तव्य धर्म को इस दुहा में कहा है कि जिसको समझने से आत्मापना मैंने आत्म स्वभाव भी अत्यंत प्रकट होता है, तथापि यथा अवकाश पत्रे उसका अर्थ लिखा है, फिर भी जितना हमको अवकाश मिला है उसका अर्थ यहाँ लिखा है, ऐसा करके 438 पत्र में उन्होंने इस दोहा का एक एक शब्द का अर्थ कथन किया है। 437 जो पत्र है वह तो यहाँ समाप्त होता है।
परिणमन जो है, परिणमन जो देखने में आता है वो तो व्यक्तित्व है,
वो कथनचित वक्तव्य है, कथनचित अवक्तव्य है, पूरा वक्तव्य भी नहीं, पूरा अवक्तव्य भी नहीं। अगर पूरा अवक्तव्य होता तो परिणमन ऐसा शब्द भी नहीं बोल सकते, आनंद ऐसा शब्द भी नहीं बोल सकते, स्वसंवेदन ऐसा शब्द भी नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें संकेत मात्र व्यक्त होता है, बाकी मुख्यतया वो देखने का विषय है, वो सुनने का विषय नहीं है।
ऐसा